ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील के रियो डी जनेरो में सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि श्री मोदी ने सभी के लिए स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने के महत्व को रेखांकित किया। वाराणसी के लाइफ सिद्धांतों को मुख्यधारा में लाने पर जोर देने सहित प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रियो डी जनेरो में G20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग में सुधार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री मोदी ने ब्राजील की अध्यक्षता में G20 के विभिन्न प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने श्री मोदी से कहा कि उनके देश ने भारत की G20 की अध्यक्षता से प्रेरणा लेते हुए कई कदम उठाने के प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ताएं की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का गैवल सौंपा। इसके साथ ही 19वां G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन के समापन भाषण में राष्ट्रपति लूला ने ब्राजील की अध्यक्षता में की गई विभिन्न पहल का उल्लेख किया, जिसमें भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत और वैश्विक विकास के लिए धनी देशों पर कर लगाने पर अभूतपूर्व बहस शामिल हैं। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्राजील ने 4 साल के अनुक्रम का अंतिम चरण पूरा कर लिया है, जिसमें G20 का नेतृत्व विकासशील देशों के हाथों में आया। इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और अब दक्षिण अफ्रीका उन दृष्टिकोणों को सामने लाते हैं जिनसे दुनिया की अधिकांश आबादी के हित जुड़े हैं। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि झारखंड के नक्सल प्रभावित 31 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। इस बीच झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकालिंगम ने आकाशवाणी समाचार को बताया है कि राज्य के 1,04,027 मतदान केंद्रों पर 5,00,000 चुनावकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2,00,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट शामिल हैं। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आज नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं के प्रबंधन के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन पर विचार मंथन सत्र आयोजित करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विचार मंथन का उद्देश्य वर्तमान पद्धतियों का पुनर्मूल्यांकन कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन पद्धतियों में संभावित बदलाव का पता लगाना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से आम लोगों के लिए खुल गया है। 33वां व्यापार मेला 14 नवंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। मेले के पहले 4 दिन व्यवसायियों के लिए थे। इस वर्ष के मेले का विषय है विकसित भारत 2047। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में शुरू होगा। यह 28 नवंबर तक चलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में यह मैच आज शाम 4:45 से खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक अपराजित रही है। उसने अपने सभी पूल स्टेज मैच जीते हैं और 15 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बनी है। सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।